الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگ اور بھائیو اللہ جل جلال من والہو نے جو دین ہم سب کو نصیب فرمایا ہے دین اسلام یہ ابدی اور سرمدی دین ہے اللہ نے اس کو رہتی دنیا تک قائم کرنے قائم رکھنے اور اس کو روشن منور رکھنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے اللہ جل جلالہ من والہ نے خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ اس دین کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہماری ہی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے پیش نظر ایک طرف اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن مجید احادیث نبویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ نے انتظام فرمایا آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے فرمودات علماء نے زندگیاں لگا کر اس کو صاف ستھرا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور رہتی دنیا تک وہ محفوظ رہے گا. ایک طرف تعلیمات جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں اور اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اور دوسری جانب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ آج سے لے کر رہتی دنیا تک قیامت تک اللہ جل شانہ ایسے افراد, ایسے رجال, ایسے لوگ, ایسی شخصیتیں, ایسی پرسنالٹیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہیں گے جن سے اللہ جل شانہ اس دین کی حفاظت کا, اس کی اشاعت کا اللہ تعالیٰ کام لیتے رہیں گے. ہر دور میں لیا ہے, اس دور میں بھی اور قیامت تک بھی ایسے افراد اللہ تعالیٰ تیار کرتے رہیں گے. ایک کاغذ ہے, کاغذات کے ذریعے سے علم, اس کو سفینہ کہتے ہیں. سفینوں سے علم ہم تک پہنچتا ہے, دین ہم تک پہنچتا ہے, اور سب سے زیادہ جو دین کے پہنچنے کا, پہنچانے کا طاقتور ذریعہ اور راستہ ہے وہ ہے سینہ بسینہ, ایک سینے سے دوسرے سینے میں علم کا منتقل ہونا. یہ دین ایک سینے سے دوسرے سینے میں پہنچایا جانا. تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید بھی دیا اور ساتھ میں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی دی. تو شخصیتوں کی بھی بڑی اہمیت ہے اور ان کا بھی دین میں بہت بڑا حصہ ہے, انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور ان کے اس کام, ان کی قربانیوں کی قدر, یہی قدردانی ہمیں دین سے اور اسلام سے اور ایمان سے محفوظ رکھے گی, جوڑے رکھے گی. علامہ اقبال نے فرمایا ہے, وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, کہ ڈالی درخت سے لگی ہوئی رہتی ہے تو پتجھڑ کے موسم میں اگرچہ سارے پتے جھڑ گئے, پھول نہیں ہیں, پھل نہیں ہیں, پتے نہیں, کچھ نہیں ہے, لیکن اگر ڈالی درخت سے لگی ہوئی ہے تو امید ہے یہ خزاں کا موسم, پتجھڑ کا موسم گزر جائے گا, پھر بہار کا موسم آئے گا. تو موسم بہار میں پتے بھی لگیں گے, پھول بھی لگیں گے, پھل بھی آئیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ وابستہ رہے شجر سے, ڈالی درخت سے لگی رہے. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ڈالی اگر درخت سے کاٹ کر الگ کر دی جائے, چاہے وہ جتنی ہری بھری ہو, سرسبز و شاداب ہو, ہری بھری ڈالی کو اگر شاخ کو درخت سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو ہم سب جانتے ہیں اس کی وہ شادابی, اس کی وہ ہریالی باقی رہنے والی نہیں ہے. چند ہی دنوں میں پتہ نہیں چولہے کا حصہ بن کر وہ کوئلہ بن کے, راکھ بن کے ختم ہو جائے گا. اس لیے ہمارے دین کی اس حفاظت میں سب سے بڑا ذریعہ جی علم والوں سے, عمل والوں سے, دین والوں سے نسبت اور آپس میں جڑنا ہے. بہت ساری شخصیات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کی طرف سے ایک انتخاب تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا. قرآن اور حدیث میں غور کرنا, فکر کرنا, مسائل کا نکالنا اور مسائل کو امت کے سامنے آسان سے آسان کر کے پیش کرنا کہ امت کے لیے سہل ہو, آسان ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب افراد آتے دین سیکھنے کے لیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لمبا عرصہ, ایک مدت گزارتے اور وہ دین سیکھ کر جب واپس جاتے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ باتوں کی تاکید کرتے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے، ان کو کچھ باتوں کی تاکید کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دین کو آسان کر کے پیش کرو، آسان کر کے سناؤ، کہ ہر ایک کو یہ اندازہ ہو کہ دین پر چلنا میرے لیے آسان ہے۔ ایک بیپاری کو پتا چلے دین پر چلنا مجھے آسان ہے، ایک کاشکار کو احساس ہو کہ دین پر چلنا میرے لیے آسان ہے، ایک ملازم، مزدور اور نوکری کرنے والے کو بھی یہ احساس ہو کہ دین پر چلنا میرے لیے بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید فرماتے تھے۔ آپ بہت ناراض ہو جاتے ہیں جب کوئی دین کے معاملے میں تھوڑی بہت بھی سختی یا سخت انداز اختیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے شکایت کی، رسول اللہ ہماری مسجد کے جو امام ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ پاک میں بہت ساری مسجدیں بن گئی تھیں، وہاں الگ الگ امام بھی طے ہو چکے تھے۔ تو ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، رسول اللہ ہم پہلے سے دن بھر محنت کر کے تھکے تھکائے آتے ہیں اور عشاء کی نماز میں ہم جماعت میں شامل ہوتے ہیں، امام صاحب اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز میں شامل ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی تو جی یہ چاہتا ہے کہ بجائے با جماعت نماز پڑھنے کے ہم تنہا نماز پڑھ کر جا کر سو جائیں، لیٹ جائیں، آرام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بہت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی سخت لہجے میں ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو دین سے دور کر دو؟ دین سے نزدیک کرنا یہ مقصد ہے۔ آپ نے فرمایا، من ام قوما فلیخفف، امام کو چاہیے کہ وہ نماز ہلکی پڑھائے، فإن فیکم الضعیف المریض وذو الحاجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے لوگ جو ہوتے ہیں اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ دین کے معاملے میں سختی برتنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، ارے دین کو مغلوب کرنا چاہو گے تو دین مغلوب نہیں ہوگا، دین ہی تمہارے اوپر غالب آئے گا۔ کچھ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ہم زندگی بھر روزہ رکھیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے کہا ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، شادی ہی نہیں کریں گے۔ جی یہ الگ الگ فیصلے، نوجوان صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے جی دین پر بہت سختی کے ساتھ میں پابندی کریں گے اور روزانہ ایک ایک قرآن پڑھیں گے، روزانہ روزہ رکھیں گے، شادیاں نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے اللہ کے نبی میں جی عمدہ نمونہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کی ذات میں کیا تمہارے لیے عمدہ نمونہ نہیں ہے؟ دیکھو مجھے اپنی طرف جی مخاطب کر کے، اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں جی، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور پھر میں نے شادی بھی کی ہے، میری اولاد اور بچے بھی ہیں جی، میں زندگی کی دیگر ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں۔ تو اللہ نے جب یہ فیصلہ کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تو اس سے ہٹ کر اور کہاں جا سکتے ہو جی؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسان کر کے پیش کرو۔ فقہ حنفی خاص طور سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دماغ کی توانائی، दिमाग को लगा दिया, खपा दिया। अल्लाह ने दिया भी था वैसे ही। अल्लाह जल्ले शानहु ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी ज़हनी सलाहियत, दिमागी कुव्वत, अक़ल की पुख्तगी अल्लाह ने अता फरमाई थी। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, इमाम मालिक के पास से आप गए तो कुछ और लोग आए और उन्होंने बताया आपकी अबू हनीफा से मुलाकात हुई, आपने उनके बारे में क्या समझा, कैसे आदमी हैं। तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जी मस्जिद के एक सुतून को दिखा कर कहा कि अगर अबू हनीफा इस सुतून को ये कहें कि ये सोने का सुतून है तो इमाम अबू हनीफा उसको साबित करके दिखा सकते हैं। अल्लाह ने ऐसा दिमाग और ऐसी कुव्वत अकल अल्लाह जल्ले शानहु ने उन्हें अता फरमाई है कि ये अगर इमाम अबू हनीफा ये कह दें तो फिर उसको साबित करके दिखा सकते हैं कि ये उस जमाने की अल्लाह की तरफ से एक अता थी कि कुरान पर गौर किया जाए जी, अहादीस तैयबा में गौर किया जाए और कुरान और हदीस गौर कर कर फिकह एक बना बनाया जी। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया आज हमारे सामने तैयार रोटी है और वो हम तैयार रोटी खा रहे हैं जी। उसके पीछे मेहनत करने वालों ने जब जमीन जो है जोत कर जमीन पर बारिश के बाद रसूलुल्लाह के इल्म की और हिदायत की बारिश के बाद सहाबा ने उस जमीन को नरम किया, फिर उसमें जो है ये अनाज बीज डाला, फिर उसके उगने के बाद उसको काटा, फिर दाना अलग किया, फिर दाने को पीसा है, उसका आटा बनाया है और आटा बनाकर फिर रोटी तैयार की है और आज हमारे सामने तैयार रोटी है और वो तैयार रोटी हमें खाना है। कोई ये फैसला करे कि दोबारा जमीन में जाके मैं बीज बोकर फिर काट के तैयार करके लाऊंगा तो आज के दौर में तो यही कहा जाएगा कि नादानी है। जब अल्लाह ने अपने फजल से रोटी तैयार करके हमारे सामने रखी है तो हमें उस रोटी से फायदा उठाना चाहिए। तो उन बुजुर्गों ने दिमागों को लगाया, कुव्वतें लगाई, अल्लाह जल्ले शानहु ने सलाहियतें जी, हिम्मतें और अजीब व गरीब अल्लाह जल्ले जलाला मन वालों ने उनको दिमागी कुव्वतें अता फरमाई थी। वो बैठकर सोचते थे, अल्लाह के कलाम में गौर व फिक्र करते थे। वजू की आयतें हैं कुरान पाक में, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक़ वामसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल काअबैन। अल्लाह जल्ले शानहु ने कुरान पाक में वजू के जी का तरीका बयान किया। अब वजू को जी सबसे आसान करके हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने पेश फरमाया है कि वजू में सिर्फ चार फर्ज हैं। आप दीगर अइमा के मजाहिब में देखें आपको और भी ज्यादा फराइज मिलेंगे, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान में जो चार चीजें जिक्र की गई फरमाया यही चार फराइज हैं, ये चार फर्ज पूरे हो जाए तो वजू पूरा हो जाता है। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद की वजह से है कि यस्सिरू आसान करो, वला तुअस्सिरू दीन को मुश्किल न बनाओ, बशिरू बशारतें सुनाओ और वला तुनफिरू लोगों के दिलों में दीन से दूरी और नफरतें मत पैदा करो। हजरत इमाम आजम ने अपने शागिर्दों को तैयार किया, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत जबरदस्त अल्लाह ने दिमागी ताकत दी जी। इस यानी इस्लामी तारीख के सबसे पहले चीफ जस्टिस हैं हारून रशीद। जब बादशाह बने तो हारून रशीद ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को काजी बनाया और सिर्फ काजी नहीं बनाया बल्कि अपनी ममलकत का, हारून रशीद की ममलकत बहुत दूर तक थी, खिलाफत बनो अब्बासिया आधी दुनिया से ज्यादा पर उनका परचम फरेरा लहराता था, आधी दुनिया से ज्यादा पर उनकी हुकूमत थी। तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को काजी उल कुजात बनाया तो जी चीफ जस्टिस के तमाम हमारी ममलकत के जितने काजी हैं उन तमाम काजियों के ये सरदार हैं और इनका रुतबा सबके ऊपर बड़ा है जी। तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने पूरी जिंदगी दीन के लिए अपने आप को खपा दिया है। अल्लाह जल्ले शानहु ने बहुत ऊंचा रुतबा दिया, हारून रशीद के साथ बैठकर बातें करने जी, उस जमाने के बादशाह आज कोई वजीर से मुलाकात कर लेता है जी, किसी वजीर के साथ में थोड़ी देर बैठने का इत्तेफाक हो जाता है तो लोग पता नहीं कितना फखर से चूर हो जाते हैं। आप अंदाजा करें, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस इमाम जी हारून रशीद के साथ लगती थी, रोजाना साथ बैठते थे। एक दफा हारून रशीद के जी महल में आप बैठे हुए हैं, हारून रशीद के सामने एक मीठा लाके पेश किया गया। हम हारून रशीद ने वो मीठा इमाम अबू यूसुफ को भी पेश किया। इमाम अबू यूसुफ से फरमाया कि आप भी मीठा लीजिए, और कहा ऐसा मीठा हमारे महल में भी कभी कभी बनता है। ये पिस्ते के तेल में बना हुआ फालूदा है। और बादशाह ने कहा हमारे महल में भी ये आम तौर से नहीं बनता, कभी कभी बनता है। हजरत को एक कटोरी में डालकर मीठा दिया, तो हजरत ने मीठा लिया, खाना शुरू किया, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू देखकर हारून रशीद ने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू, क्या वजह है? तो इमाम यूसुफ ने फरमाया, मैं जब पढ़ता था इमाम अबू हनीफा के पास, मेरी माँ मुझे पढ़ने नहीं देती थी, गरीब घराना था, मैं जबरदस्ती जा जा के मजलिस से दर्स में बैठ जाता, माँ मुझे जबरदस्ती खेंच खेंच के ले जाती थी। तो एक दफा माँ ने आके हमारे उस्ताद को बहुत सख्त लहजे में कहा कि मेरे बच्चे को आप बर्बाद कर रहे हैं, हमारा गरीब घराना, मैं उसको धोबी के पास छोड़कर जी चंद रुपए कमाना सिखा रही हूं और आप बार बार अपने पास बुला के बिठा लेते हैं। तो हजरत इमाम यूसुफ ने उस मौके पर फरमाया था जी अम्मा जान, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, जो यहां बैठ रहा है, ये तुम्हारा बेटा फालूदे पिस्ते के तेल में फालूदा खाना सीख रहा है, पिस्ते के तेल में फालूदा खाना सीख रहा है। तो जी उस बुढ़िया को गुस्सा आ गया, कहा सटिया गए आप, बुढ़ापे की वजह से दिमाग खराब हो गया है, यहाँ रोज की रोटी नहीं मिल रही है और आप कहते हैं पिस्ते के तेल का फालूदा। तो हजरत इमाम यूसुफ ने फरमाया कि मेरे शेख, मेरे उस्ताद ने मेरे तालिब इल्मी के दौर में कहा था कि ये खाना सीख रहे हो, आज अल्लाह ने मुझे वो खिलाया। तो इमाम अबू हनीफा की बात मुझे याद आ गई, ये उन बुजुर्गों के साथ, उन बड़ों के साथ जी बैठकर, बादशाहों के साथ बैठकर मजलिस लगाना और वहां इंसाफ को कायम रखना। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने लगा तो बहुत अजीब लर्जा, खौफ, थरथराहट, एक अजीब कैफियत थी आपके ऊपर मरने के वक्त में। लोग आए, मुलाकात करते थे, कुछ खवास आए, उन्होंने पूछा हजरत बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है, कोई खास बात? तो हजरत इमाम यूसुफ ने फरमाया, मैंने हर फैसला इंसाफ के साथ में किया जी, एक फैसले के बारे में मुझे शक है, शुबा है जी कि मुझसे कुछ कमी ज्यादती हो गई होगी, इस वजह से मैं अल्लाह के सामने पेशी के लिए, और कल अल्लाह ताला मुझे उस बारे में सवाल न कर ले, इसके लिए डर रहा हूं। पूछा क्या हुआ था? फरमाया हारून रशीद पर जी एक आदमी ने दावा दायर कर दिया कि मेरा कुछ माल या मेरी कोई चीज हारून रशीद बादशाह के पास है। तो जब भी काजी को फैसला करना पड़ता है तो काजी दोनों को, मुद्दई को, मुद्दा अलैह को, दोनों लोगों को सामने खड़ा करके दोनों को एक एक यानी एक हिसाब में लाकर जी वहां उनके ऊपर फैसला किया जाता है। चूंकि बादशाह पर दावा दायर किया गया था, जाहिर बात है बादशाह को उसके मसनद से उतार कर जी नीचे खड़ा के फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। मैं उनको तो नीचे नहीं उतार सका, मैंने इस मुद्दई को जिसने दावा दायर किया था, हारून रशीद के बाजू एक कुर्सी बिछा कर मैंने उस मुद्दई को उसके पास बिठा कर फैसला किया, लेकिन मुझे डर हो रहा है कि दोनों को मैंने बराबर नहीं किया, इस पर कल अल्लाह मुझसे सवाल न कर लेंगे। ये अल्लाह का डर है, खौफ है जी। रोजाना आधा कुरान पढ़ते थे, रोजाना 200 रकात नमाज पढ़ते थे जी। रोज की 12 रकातें सुन्नत हमारे लिए मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी फर्ज नमाजों के अलावा जो 12 रकात सुन्नत पाबंदी से पढ़ें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाएंगे। फजर से पहले की 2 रकात, जोहर से पहले की 4 रकात, जोहर के बाद की 2 रकात, मगरिब के बाद की 2 रकात, ईशा के बाद की 2 रकात, ये सुन्नत मुअक्कदा नमाज कहलाती है। और इन सुन्नत मुअक्कदा को 4, ये जो 12 रकाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 12 रकात पाबंदी से पढ़े अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। हमारे लिए 12 रकात मुश्किल है, आप तसव्वुर करके देखें जब लोगों को बड़े लोगों से रابطے हो जाते हैं जी, इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, लोगों से ताल्लुकात बढ़ जाते हैं, तो फिर दीन के लिए, दीनी कामों के लिए मवाक़े, फुर्सत कम हो जाती है। लेकिन हजरत इमाम यूसुफ इतने बड़े रुतबे पर पहुंचने के बावजूद रोजाना 200 रकात नमाज पढ़ते थे। इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी, ये हजरत इमाम जी अबू हनीफा के भी शागिर्द हैं, छोटी उम्र में आए थे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे, अरबी जवान थे माशाल्लाह। हजरत इमाम अबू हनीफा से इल्म सीखा, जो कुछ बाकी रह गया इमाम अबू हनीफा के इंतकाल के बाद जी अपने उस्ताद हजरत इमाम अबू यूसुफ से सीखा। दोनों एक हिसाब से यानी साथी थे, साहेबैन थे, इमाम अबू हनीफा के दोनों शागिर्द थे। लेकिन फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से भी दीन सीखा, उनसे भी इल्म सीखा और उनसे भी माशाल्लाह फिकह, दीनी मसाइल को सीखा। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक तिहाई कुरान पढ़ते थे, 3 दिन में कुरान मुकम्मल करते थे जी। हमारे बरस हा बरस गुजर जाते हैं, बल्कि मैं तो अक्सर आपके सामने अर्ज करता हूं कि पता नहीं हम में से कितनों को कुरान पढ़ना आता ही नहीं है जी। तो कुरान एक हक है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और कुरान का एक हक है। 3 दिन में कुरान हजरत पढ़ते थे जी। हजरत के शागिर्द थे, खिदमत करते थे, बहुत खूबसूरत अरबी जवान थे और माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत हुसन दिया था। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में बैठते, जीरक जहीन होशियार तालिब इल्म थे, बड़े ही जी जहीन थे, तो वो आगे बैठते थे, लेकिन उनकी खूबसूरती की वजह से कि अभी चेहरे पर बाल दाढ़ी नहीं आई थी, रसूलुल्लाह जी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा एहतियातन उनको पीछे बिठाते थे कि अभी अमरद हो, अभी चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, इसलिए आगे नहीं, जरा पीछे बैठो, ये एहतियात करते। लेकिन बहुत खूबसूरत थे जी। उनके एक शागिर्द किसी जरूरत के लिए उनके घर गए, कुछ खिदमत के लिए, कि शागिर्द को उस्ताद के घर जाना था किसी काम के लिए, तो उस्ताद ने घर भेजा, तो वो उस्ताद शागिर्द घर गए कुछ खिदमत के लिए, कुछ काम किया, वापस आए, इत्तिफाक से शागिर्द की नजर इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी की बीवी पर पड़ी। और अजीब इत्तिफाक कि इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी तो खूबसूरत और इमाम मोहम्मद की बीवी वो जी काली कलोटी बदसूरत थी। तो वो शागिर्द आया वापस, वापस आने के बाद हजरत की मजलिस में जब बैठा तो बार बार वो हजरत के चेहरे को घूर घूर के देखता, हैरान हो गया था। हजरत ने बहुत गौर किया कि ये बार बार मुझे घूर के देख रहा है। तो मजलिस खत्म होने के बाद में हजरत ने पूछा कि जी घूर घूर के क्यों देख रहे हो, आखिर कोई खास बात? तो उसने अर्ज किया, हजरत अल्लाह ने आपको इतना हुस्न दिया है, लेकिन आपने अपने लिए जो बीवी का इंतखाब किया वो तो बिल्कुल बदसूरत काली कलोटी है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया जी, वो सुनने का, हजरत इमाम मोहम्मद ने फरमाया, दुनिया तो एक खेल की तरह से है जी, यहाँ जी एक तमाशे की तरह से है, ये जैसे गुड़ा गुड़ी का खेल खेल दिया जाता है, उस तरह की जिंदगी है, किसी को भी जोड़ दिया जा सकता है, असल तो आखिरत है, अल्लाह के पास पहुंचना और अल्लाह के पास जवाब देना है। जिंदगी दुनिया की खेल है, कैसे भी गुजर जा सकती है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हंसते नहीं थे, मुस्कुराते नहीं थे। लोगों ने पूछा, हजरत हमने जिंदगी में कभी आपको हंसते मुस्कुराते नहीं देखा, लोग कह कहे लगाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, लेकिन आपने कभी जी हंसा नहीं, मुस्कुराते आपको नहीं देखा। तो हजरत इमाम मोहम्मद ने बड़ी अजीब बात फरमाई, हजरत इमाम मोहम्मद ने फरमाया, लोगों ने मुझे ब्रिज बनाया है, पुल बनाया है, जन्नत में जाने के लिए मुझे लोगों ने पुल की तरह से, ब्रिज की तरह से बनाया, मेरे ऊपर चलकर जन्नत को जाना चाहते हैं, मतलब मुझसे दीनी मसले पूछ कर सीख कर वो जन्नत को जाना चाहते हैं, मुझे लोगों ने पुल बनाया है। तो अब सोच कर देखो, सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ के जन्नत को जाना चाह रहे हैं, कहीं मैं उनको रास्ता दिखाने में मुझसे भूल चूक हो जाए तो उनकी मंजिल गलत हो जाएगी। तो ऐसा आदमी कभी हंस कैसे सकता है, कभी मुस्कुरा कैसे सकता है, कह कहे कैसे लगा सकता है? मुझे वो जो जज्बा, वो जो हैसियत है, उसकी वजह से मुझे डर लगा रहता है कि कोई मुझसे भूल चूक ना हो जाए। इमाम मोहम्मद ने बहुत बड़ा काम किया है, किताबें लिखी हैं जी। एक बहुत बड़े जी मुस्तशरिक ने, जो यूरोपियन जो जी साहेब इल्म है, उन्होंने इमाम मोहम्मद की किताबें पढ़ी और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़कर उन्होंने फैसला किया और लोगों के सामने कहा छोटे मोहम्मद का इल्म इतना जबरदस्त है तो बड़े मोहम्मद का इल्म कैसा होगा। हजरत इमाम मोहम्मद की तरफ इशारा करके फरमाया ये छोटे मोहम्मद हैं और तुम्हारे जो बड़े मोहम्मद हैं यानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया छोटे मोहम्मद का इल्म ऐसा है तो वो बड़े मोहम्मद का इल्म कैसा होगा। तो बुजुर्गों ये अल्लाह वाले बुजुर्गाने दीन इन्होंने जिंदगियां खपाई हैं लगाई हैं और लगाकर हमारे सामने दीन को आसान करके जी साफ सुथरा करके और फिर जो है जी जैसे मैंने अर्ज किया रोटी बनाकर तैयार रोटी बनाकर हमारे सामने पेश किया है और एक मोमिन मुसलमान अपने दीन से उतना ही मजबूत लगाव उसका गहरा ताल्लुक उतना ही रहता है जितना अपने बड़ों से अकाबिर से और अल्लाह वालों से उसका रिश्ता मजबूत रहता है। और ये अल्लाह का निजाम है अल्लाह जल्ल जलाल मन वालहु उस दौर से लेकर आज तक अल्लाह ताला शख्सियतें तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज से लेकर कयामत तक तैयार होती रहेंगी। और ये अल्लाह का निज़ाम इसलिए है कि अल्लाह ताला दीन की हिफाजत करना चाहते हैं। जिस जमाने में जहां अल्लाह की तरफ से चराग जलें जी और रोशनी मिले तो उस रोशनी से अपने आप को महरूम नहीं रखना चाहिए। अल्लाह वालों की रोशनी अपनी ज़िंदगी में लेकर अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर करना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।